ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ایام ازا 1443 ہجرہ کے پہلے مہینے ماہ محرم کی پہلی تاریخ، ہاں یہ وضاحت میں کر دوں، دو تین مختصر تمہیدی باتیں آج بیان کرنا ہوں گی، یہ وضاحت میں کر دوں کہ پچھلے مہینے میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ شاید اس سال کا یہ عشرہ سوشل میڈیا پہ نہیں جائے، یعنی نہ فیس بک پر نہ یوٹیوب پر، اور اس کی وجہ بھی میں نے بتائی تھی کہ کچھ ایسا کمپٹیشن کا ایٹموسفیئر بن جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے بعض اوقات حق بات کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو آسٹریلیا کے باہر ہیں، ان کے لیے یہ اعلان کہ اب انفارچونیٹلی آدھے سے زیادہ آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن ہے، خاص طور پر جس جگہ سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یعنی الاثر اسلامک سینٹر میلبرن، تو میلبرن کا شہر لاک ڈاؤن میں ہے اور گھر سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے سوائے وہ تین چار ضروری کاموں کے. عزاخانے اور امام بارگاہیں بند ہیں، اور خالی عزاخانے اور امام بارگاہیں نہیں، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ریلیجس سینٹرز. اس مجبوری کی وجہ سے فیس بک اور یوٹیوب پر یہ مجلس جا رہی ہے، اور ابھی تک کے اناؤنسمنٹ سے، یعنی گورنمنٹ کا اناؤنسمنٹ، پہلی تین مجلسیں لاک ڈاؤن میں ہیں، اور پھر اگر اس کو فردر ایکسٹینڈ کر دیا گیا تو یہ پورا عشرہ ہی صرف لائیو براڈ کاسٹنگ کی وجہ سے ہوگا، کے ذریعے سے ہوگا، اور اگر یہ لاک ڈاؤن تین دن کے بعد ختم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ مومنین کرام اور مومنات عزا خانوں میں آئیں گے. تو یہ تو جو میں نے پچھلے مہینے اعلان کیا تھا اس کے حوالے سے وضاحت. یہیں پر میں اسی اناؤنسمنٹ کو مزید واضح کر دوں کہ ہاں، لاک ڈاؤن کا تو اعلان ہے، لیکن تمام ریلیجس سینٹرز اور ہمارے امام بارگاہ اور اسلامک سینٹر کو یہ اجازت ہے کہ سینٹرز کھول کر عزاخانے سجائے جا سکتے ہیں. آپ میرے رائٹ لیفٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ علم بھی ہیں، شبی بھی ہیں، میں بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں، اور یہ بھی کوئی ریکارڈڈ مجلس نہیں ہے. میں یہاں سے بہت دور رہتا ہوں، وہاں سے چل کے میں عزاخانے میں آیا کہ عزاخانے کھولنے کی اور وہاں سے لائیو اسٹریمنگ کی اجازت ہے. چنانچہ جب گورنمنٹ کی جانب سے کوئی پابندی نہیں ہے تو شرعاً بھی بالکل اجازت ہے، اور ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے چاند رات کو عزاخانے سجائے جاتے ہیں، हाँ कोई मजबूरी हो जाती कि शरई कोई रुकावट होती या हुकूमती कोई रुकावट होती तो अलग मसाला था, और जब ये कोई रुकावट नहीं तो अदा खाने में ही सफे अदा बिछा कर सफे अदा बिछी है। लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से इंतजाम करने के लिए जिन 5 आदमियों की इजाजत गवर्नमेंट ने दी है वो मौजूद हैं, और मेरे दाएं और बाएं वो तबर्रुकात भी मौजूद हैं जो हर साल अय्याम अज़ा की चांद रात को सजाए जाते हैं और उसमें ये मजलिस हो रही है। तो कम अज कम अल असर इस्लामिक सेंटर जब तक के वाकान कोई ऐसी कानूनी रुकावट ना आ जाए, उसी तरीके कार के मुताबिक अय्याम अज़ा की मजालिस बल्कि पूरा साल की मजालिस मुनाकिद करता है, जो हमेशा से साहिबान ईमान का तरीका रहा है, क्योंकि ये वो सफ़े अज़ा है जिसे शहजादी कौनैन सलामुल्ला है अलैहा ने बिछाया भी है और वो उस पर बाकायदगी से तशरीफ भी लाती। जहां मजबूरी यानी जिन मुल्कों में या जिन शहरों में मजबूरी, जहां इजाजत नहीं है अदा खाना खोलने की, वहां पे तो फिर वो मुतवक्किल के माहौल की तरह जंगलों में जाकर भी मजालिस की जाएंगी। जरा देखिए कुछ आवाज साउंड प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसी में एक और बात मैं वाजह कर दूं और फिर मैं अपने असल मौजू पर आ जाऊं। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मुहर्रम का चांद एक दिन पहले हो गया है। चुनांचे नॉर्थ अमेरिका है या यूरोप के कई ममालिक हैं या अफ्रीका है या इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, खुद इराक यानी करबलाए मोहल्ला, सऊदी अरब, गल्फ, तो वहां पे अय्याम अज़ा की सारी तारीखें अल असर इस्लामिक सेंटर मेलबर्न की मजालिस के मुकाबले में एक दिन एडवांस में होंगी। जब वहां 5 मुहर्रम की मजलिस होगी तो हमारे यहाँ 4 मुहर्रम होगी। तो मजालिस का जो पूरा 10-12 दिन का प्रोग्राम है उसमें यह ख्याल रखिएगा, ये बात हो रही है जो लोग सुन रहे हैं, कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर से कहीं तो एक दिन जो है आपको हर मजलिस डिले मिलेगी। तो बाकी तो कोई मसाला नहीं होता है, लेकिन शबे आशूर, आशूर, शामे गरीबा, वहां पे ये आपके लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ये दो तो बिल्कुल आम से ऐलानात थे। इसके बाद फिर आज की मजलिस जिस उनवान पर है उसके बारे में मैं बता दूं कि जो हमारा असल उनवान है इस अय्याम अज़ा के अशरे के लिए 1443 हिजरा का हमारा सब्जेक्ट या टॉपिक है इमाम जमाना और विलायत अली और मेलबर्नी दज्जाल। ये दो चीजें थी, ये सब एक ही एक दूसरे से रिलेटेड है। इस पर हमारी गुफ्तगू सही मानों में कल से यानी नेक्स्ट डे की मजलिस से शुरू होगी। आज की मजलिस चांद रात की है, तो चांद रात की वजह से दो तीन चांद रात से रिलेटेड मैसेजेस आप तक पहुंचाना। और 2-3 साल पहले जाफरी सेंटर अटलांटा के अशरे में चांद रात को मैंने इस उनवान पे बात की थी, और बाद लोगों को इतनी पसंद आ गई कि वो हर साल ये फरमाइश और ख्वाहिश करते हैं कि मौलाना ये चीजें आप हमको हर चांद रात को रिमाइंड कराते रहें। और आज भी यही सूरत हाल है कि पिछले साल भी अल असर इस्लामिक सेंटर मेलबर्न, क्योंकि अल असर नाम के दुनिया में बहुत सारे सेंटर है, मेलबर्न का जो अल असर इस्लामिक सेंटर है जो बरादर मोहतरम जकी मंजू साहब ने बनाया है और वही इसको रन कर रहे हैं बाकी मोमिनीन की मदद से, तो ये पिछले साल भी मैंने पहला अशरा यहाँ पढ़ा। यही COVID-19 और कोरोना वायरस का प्रॉब्लम था, हम ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया से बाहर जा ही नहीं सकते, तो वहां भी ये बातें बयान की थी मैंने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की ये पहली मजलिस पूरी की पूरी रिपीटेशन या तकरार है लास्ट ईयर की, लेकिन वो जो मैसेजेस हर साल के लिए सेम है उन्हीं को अभी आपके सामने पेश करना। और इस हवाले से पहली बात की जहन में रखिएगा कि माहे मुहर्रम कबूलियत दुआ और कबूलियत हाजात के लिए एक बहुत अहम महीना करार दिया गया है। बाज मोमिनीन को इस पे हैरत होती और बाद मोमिनीन को उस पर एतराज होता कि मौलाना शहजादी कौनैन के घर में मसलन 18 लाशेज खानदान के पड़े हैं और हम अपनी रोजी की बात कर रहे हैं और हम अपनी सेहत की बात कर रहे हैं और हम अपनी औलाद की बात कर रहे हैं। आशूर के दिन जब ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाती उसके फौरन बाद जो दुआ जो पूरी शिया दुनिया में मशहूर हो गई है दुआए अलकमा के नाम से, अगर जो दुआए अलकमा नहीं वो दुआए सफवान है। सफवान जम्माल ने वो दुआ मासूम से सुन के हम तक पहुंचाई है, अलकमा का उससे दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं उस दुआ से। ज़ियारत आशूरा तो अलकमा ही के जरिए आई है लेकिन दुआ की बात है। तो जब से उसका तर्जमा लोगों ने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में अक्सर जगह आमाले आशूरा या ज़ियारत आशूरा प्रोजेक्टर पर स्लाइड की मदद से होते हैं जहां पे अरबी के नीचे उर्दू तर्जुमा या इंग्लिश तर्जुमा होता, तो काफी इस किस्म के जो एतराज हो सकते थे वो दूर हो गए क्योंकि उस दुआ के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन मैं अपने अंदाज से एक दूसरे एंगल से ये चीज हर साल समझाता हूं तो उसी अंदाज से बात आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इस जुमले की मजीद वजाहत करूं कि ये मुहर्रम का महीना और इसका पहला अशरा कबूलियत दुआ के लिए बहुत अहम करार दिया गया, इससे पहले कि मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं ये आपको याद दिला दूं कि पहली मुहर्रम फर्स्ट ऑफ मुहर्रम जो दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों में इस वक्त जब मैं ये मजलिस पढ़ रहा हूं होगी, कहीं इस वक्त सुबह का वक्त होगा, कहीं दोपहर का वक्त होगा, कहीं मगरिब करीब हो रही होगी, यहां अभी चांद रात है, यानी यहां पे पहली मुहर्रम का दिन रात नहीं वो आज है, दिन कल आएगा। पहली मुहर्रम के लिए हमारे आठवें इमाम इमाम अली इब्ने मूसा रिजा अलैहि सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हर साल पहली मुहर्रम को दिन के वक्त दोनों हाथ बुलंद करके आसमान को देख के दुआ मांगा करते थे और वो दुआ मफातिहुल जिना में मौजूद है फर्स्ट मुहर्रम के आमाल में। वो दुआ जो है तो एक पेज की दुआ लेकिन उसमें दुआ वाला अंदाज सिर्फ एक लाइन का है। दुआ माने कुछ मांगना, वो सिर्फ एक लाइन का है। उसके बाद फिर अल्लाह की तारीफ है और अल्लाह के मुख्तलिफ खसूसियात बयान की गई। हमारे यहां बाज खतीब हजरात का अंदाज खिताबत ऐसा है कि तौहीद परवरदिगार सिमट के सिर्फ खुतबों तक रह गई थी, बाकी मजलिस में तो कहीं पता भी नहीं चलता था जो उनकी जो भी मजलिस का उनवान हो, अब खुतबों में से भी तौहीद परवरदिगार खत्म होती जा रही है। लेकिन ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो आज छेड़ना मुनासिब नहीं। पूरी दुआ परवरदिगार की तौहीद जो अल्लाह के रसूल हर साल फर्स्ट ऑफ मुहर्रम को दिन के वक्त मांगा करते थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उसमें दुआ दुआ माने टू आस्क समथिंग वो सिर्फ एक लाइन है। उसके बाद देख लीजिए फिर अल्लाह की तारीफ है कि तू सबसे बड़ा है, तू लोगों की आवाजें सुनने वाला है, तू हाजतें पूरी करने वाला है, तेरा कोई शरीक नहीं, और फिर एक आखिरी लाइन है जो मेरा इस अशरे का सब्जेक्ट बन रहा। दो चीजें, अब दुआ शुरू कहां से होती है, सिर्फ एक लाइन। ये पहली मुहर्रम की दुआ जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर पढ़ सके तो पढ़ें, वरना जो दुआ की समरी है पहली लाइन वो कम अज कम अपने अल्फाज में अपने जहन में बिठा लीजिए। अल्लाहुम्मा अंतल इलाहुल कदीम व हाजही सनतुन जदीदा। आए खुदा तू कदीम माबूद यानी तू हमेशा से, इस कायनात की सबसे पुरानी चीज कौन है, अल्लाह। ये लफ्ज भी मैंने गलत कहा, कायनात तो कहते ही उसे जो क्रिएट की गई हो, अल्लाह तो क्रिएटर है क्रिएचर नहीं, लेकिन इलाहुल कदीम तू कदीम खुदा हमेशा से है, और वह हाजही सनतुन जदीदा, और आज ये चांद रात आ गई है, ये पहली मुहर्रम के दिन की दुआ, और ये नया साल है न्यू ईयर। अब ये न्यू ईयर को जिस तरह से बाज दुश्मनान अहले बैत सेलिब्रेट करने लगे हैं वो भी एक मौजू है, लेकिन मैंने अपनी इससे पहले की स्पीच में जो गदीर के दिन थी अर्ज किया था कि जो उनवान पर बाकी उलमा गुफ्तगू करते हैं बहुत अहम है, लेकिन जहां उनकी गुफ्तगू खत्म होती है उसके आगे मेरा सब्जेक्ट शुरू होता। तो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना, इसके ऊपर दुश्मनाने अहले बैत की पहली पहचान, उसमें बहुत बातें होती, यूट्यूब पे क्लिप भरे पड़े, लेकिन पहली मुहर्रम है तो न्यू ईयर, सनतुन जदीदा। आए खुदा तू कदीम अल्लाह, अंतल इलाहुल कदीम, तू कदीम है यानी हमेशा से रहने वाला अल्लाह है, मगर ये साल तो आ जा रहा है, ये साल तो आ जाया है, ये नया है, जदीद नया है, न्यू ईयर। तो अब क्या है ये न्यू? अस आलो का, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं, मांग रहा हूं तीन बातें, ये पूरे साल के लिए तीन बातें आज आप पहली मुहर्रम को मांग रहे हैं, ये कहकर कि ये नया साल है। मैंने सुना है कि आजकल कुछ ऐसा माहौल बन गया कि अंग्रेजी नया साल जब आता है तो बहुत से लोग खुद अपने आप से कुछ अहद करते हैं कि इस साल हमें ये काम करके दिखाना। टाइम मेरे पास नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, छोड़िए। तीन बातें मांगी गई उस पहली दुआ में जो आपको मफातीहुल जिना में कल मिलेगी, यानी मफाती में आज है लेकिन आप कल पढ़ेंगे। तो असअलो का, तो आए खुदा ये नया साल है, मैं तुझसे सवाल करता हूं, अल इस्मता वल कुव्वता वल इश्तगाला, तीन चीजें मांग रहा हूं। अच्छा, ये मैंने शॉर्ट कर दिया है, नंबर एक प्रोटेक्शन, नंबर दो एक ताकत एक पावर, और नंबर तीन इश्तगाल, जिसकी अंग्रेजी मुझको नहीं आती। अब वो असल जुमला क्या है? अल्लाहुम्मा अंतल इलाहुल कदीम वहाज़ेहि सनतुन जदीदा, असअलो का, मैं तुझसे मांगता हूं इस साल, पूरे साल आप क्या अल्लाह से मांग रहे हैं? इस्मता मिन शैतान, मुझे प्रोटेक्ट कर ले शैतान से, मुझे बचा ले शैतान से, मुझे महफूज कर ले शैतान से। यह आपकी वो दुआ है जो पहली मुहर्रम को मांगी गई है अगले पहली मुहर्रम तक के लिए, पैगंबर इस्लाम की दुआ, और आठवें इमाम ने हम तक पहुंचाई। आठवें इमाम करबला के बाद है, पहली यानी मुहर्रम की कुछ चीजें ऐसी जो पैगंबर के जमाने में थी, करबला के बाद फिर उसको खत्म किया गया, लेकिन ये दुआ तो आठवें इमाम ने हम तक पहुंचाई है। तो शैतान से पूरा साल तहफ्फुज़, या आज पहली मुहर्रम को आपको मांगना। वल कुव्वता अला नफ्स अल अमारत बिस्सू, यहां पे एक बहुत पुराने सवाल का जवाब भी आ रहा है लेकिन तफसील के साथ नहीं, टाइम नहीं। और वो ये है कि हमें तो शैतान मिसगाइड करता है, गुमराह करता है। शैतान को किसने गुमराह किया भाई? हमें तो शैतान बहका देता है ना, हम अपने हर गुनाह की जिम्मेदारी शैतान पे डाल देते हैं, तो मगर शैतान ने जो गुनाह किया उसको किसने बहकाया? वो असल दूसरी चीज, जो तेरहवें पारे की पहली आयत, अब मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं, आयत भी नहीं पढ़ रहा क्योंकि अभी तो इतनी सारी बातें मुझे कहना है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं। तो कहा क्या है? खुदा मैं तुझसे मांगता हूं, नंबर एक प्रोटेक्शन फ्रॉम शैतान, नंबर दो वल कुव्वा, अब मुझे वो ताकत अता फरमा, वो कुव्वत अता फरमा, वो पावर अता फरमा। इंसान ताकत क्यों मांगता है? किसी के अगेंस्ट ना, काफिरों के खिलाफ, मुनाफिकों के खिलाफ, दुश्मनान अहले बैत के खिलाफ नहीं। कहा मुझे ताकत अता फरमा अला नफ्स, अपने खिलाफ। हर इंसान के अंदर एक नफ्स है जिसका अंग्रेजी सही लफ्ज तो मुझे पता नहीं चला, सोल कहा जाता है, शायद रूह को स्पिरिट कहा जाता हो, तो सोल, जो मेरे अंदर एक नफ्स है, कौन सा नफ्स? अलम्मारते बिस्सू, जो गुनाहों पर मुझे उभारता है, इनकरेज करता है, जो मुझसे गुनाह कराता। शैतान नहीं, असल तो हमारे अंदर वो चीज है जो हमसे गुनाह करवाती। तो आए खुदा मुझे इतनी पावर अता फरमा कि मैं अपने आप से जंग कर सकूं। ये वही है जिसे रिवायतों में जिहाद अकबर कहा गया है, हजरत इमाम खुमैनी की क्लासिकल बुक 14 अहदीस की पहली हदीस। तो कहा ये ताकत मांगी अपने आप से लड़ने की, जितने गुनाह इसीलिए तो होते हैं ना, शराब पीने को मन चाहता, जिसको गुजराती या हिंदी में मन कहते हैं, उर्दू में मुहावरा दिल चाहता, इसके खिलाफ मुझे ताकत अता फरमा, इसके खिलाफ कोई और आपकी मदद नहीं करेगा, आपको खुद इसके खिलाफ जंग करना है, ये ताकत आप मांग रहे हैं, अपने मन के खिलाफ जो गुनाह की तरफ ले जाता है। वह इश्तगाल में मैं कर रहे बोली, और हर उस काम की तौफीक अता फरमा जो मुझे तुझसे करीब कर दे। यानी पूरा साल आपका टारगेट हो अल्लाह से कैसे क्लोज होते हैं, दोस्तों से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, बीवी से नहीं, बच्चों से नहीं, अल्लाह से करीब होना, ये तीन चीजें मांगी गई। ये वो दुआ है जिसके ऊपर मैं एक घंटा पढ़ सकता हूं। तीनों बहुत अहम चीजें हैं, लेकिन क्योंकि ये कल दुआ पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया वालों को, जहां पे फर्स्ट ऑफ मुहर्रम का डे कल, बाकी दुनिया के लोग अगर ये सुन रहे हैं तो ये दुआ वो पढ़ चुके होंगे, वरना मेरी मजलिस के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये हाज़ही सनतुन जदीदा, आए खुदा ये न्यू ईयर, तो न्यू ईयर में हमने मांगा क्या मांगा, शैतान से बचना, अपने नफ्स के खिलाफ ताकत और हर वो काम की तौफीक जो हमें अल्लाह के करीब कर दे। फिर इसके बाद फिर अल्लाह की तौहीद बयान की गई है कि अल्लाह है कौन, और फिर आखिरी लाइन आती इख्तिताम कहां पे दुआ का, वो भी बहुत अहम, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। पहले दिन की, साल के पहले दिन की दुआ है न्यू ईयर की, कि आए खुदा हमें मरते दम तक हिदायत पे बाकी रख। यह है इमाम जमाना का मौजू, जब ज़हूर इमाम के बाद इस दुआ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं एक जुमला और कह दूं, और इमाम जमाना से पहले इस दुआ की सबसे ज्यादा जरूरत कब थी, आशूर के दिन, कौन सा आशूर, 61 हिजरी का, जब हुसैन करबला में थे। एक तो यह वक्त था जहां ईमान का प्रोटेक्शन चाहिए था, कितने लोगों के कदम स्लिप हो गए थे उस वक्त, कितने अच्छे अच्छे मोमेंट बहक गए थे, और यह इसकी जरूरत पड़ेगी जब जमाने का इमाम आएगा। तो ये दुआ हमें बता रही कि मुहर्रम की पहली तारीख न्यू ईयर हमें मैसेज क्या दे रहा पूरे साल के लिए। मैंने कहा ना कि इसमें पूरी मजलिस हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया। और यहीं पर दूसरी बहुत अहम बात, मैं अक्सर एक जुमला अपनी मजलिसों में कहता रहता हूं, क्योंकि हमारे यहां शहजादी कौनैन का कसीदा बहुत मशहूर हो गया, कितनी सखी है तू फातिमा, और मैंने ये अर्ज भी किया था कि शायरी के अंदर बाज औकात कुछ लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करना पड़ते हैं जो सिर्फ काफिये की वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं, शायद शायर को भी पता हो कि ये लफ्ज यहां सही नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है, शायरी की मजबूरियां अलग है, वो एक अलग सब्जेक्ट भी है। तो मैं अक्सर यहां पे कहता हूं कि फातिमा सखी नहीं, बहुत मशहूर एक हदीस भी है और मेंबर से पढ़ी भी बहुत जाती थी एक जमाने में, कि इंसानों की दो किस्में हैं, एक देने वाला और एक न देने वाला, लेकिन फिर देने वालों की भी दो किस्में, एक को कहते हैं सखी, एक को कहते हैं करी। अहले बैत सखी नहीं करी, सखी कहते हैं जो खुद भी इस्तेमाल करे अल्लाह की नेमतें और दूसरों को भी शेयर कराए, खुद भी इस्तेमाल करे, और करीम कहते हैं जो खुद कुछ इस्तेमाल ना करे, जो उसके पास है वो सब दूसरों को दे दे। और इसके अगेंस्ट निगेटिव वे में भी दो किस्में हैं, एक है बखील जो खुद सब कुछ खाता पीता है लेकिन किसी को देने को तैयार नहीं, और एक है लईम जो खुद भी खाने को तैयार नहीं है, सारी जिंदगी फाके करके चला गया दुनिया से, बाद में पता चला इसके पास तो इतनी दौलत थी और दूसरों को भी नहीं दे सकता, नहीं देता। अब इसकी तशरीह की जरूरत नहीं, अहले बैत सखी नहीं, अहले बैत करीम, यानी अहले बैत खुद कुछ इस्तेमाल नहीं करते, जो कुछ है वो हमें और आपको, और हमें और आपसे मतलब खाली मोमिन नहीं, उनका दस्तरखान अल्लाह की तरह से मोमिन और काफिर, मुनाफिक और दुश्मन और चाहने वाले सबके लिए हाजिर है वो करीम। और कुरान करीम में कई जगह पे अहले बैत की यह खसूसियत बयान, वो युक्सरून अला अनफुसहिम वलो कान बिहिम खसासा, सूरह हदीद, सूरह हश्र, वो लोग खुद परेशानी में होते हैं लेकिन फिर भी अपने आप पे तरजीह देते हैं दूसरों को। या सूरह दहर, हल अताल इंसान हीन मिन अद्दहर, मासूम की एक हदीस है, क्योंकि चांद रात के हवाले से कुछ आमाल बता रहा था तो जिमनन ये चीज जहन में आ गई, एक जुमले की हदीस, कि अगर कोई दिन शरण बहुत खराब दिन हो, जैसे पीर का दिन ट्रैवलिंग के लिए खराब है, वो जो होता है कमर दर्द अक्रब है या और कोई खराबी, और उस दिन कोई काम करना है तो सूरह दहर पढ़ के वो काम करना, क्योंकि खुदा ने सूरह दहर में कहा है फवका अल्लाह सैयात ذلك اليوم, अल्लाह उस दिन की खराबी से बचा लेगा तुम्हें। सूरह दहर बहुत अच्छा अमल है, बहुत अहम अमल है किसी भी दिन की नहुसत और खराबी से बचने के लिए। लेकिन ये मैं कहीं और चला गया, अब वापिस आता हूं। ये आयत मैंने जल्दी में जरा गलत पढ़ ली, लेकिन इसको ठीक करने का वक्त नहीं। अब आइए, असल जो बात मैं कह रहा था वो ये सूरह दहर में, वो युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, ये अहले बैत की खासियत है ना, ये है करीम। अला हुब्बिही, ये जमीर का मर्जे क्या है, अल्लाह है कि ताम है? ज्यादातर उलमा ने कहा इसका ताम है, यानी खाना है उनके सामने और खाने की ख्वाहिश भी है, तीन दिन का रोजा है, मगर फिर भी वो खुद फाके करेंगे, मिस्कीन और यतीम असीर को खाना खिला देंगे। तो कुरान हो के हदीस हो, अहले बैत करीम, अहले बैत ये पसंद ही नहीं करते कि कोई उनके गम में या मुसीबत में आके शरीक हो और वो उसको खाली हाथ पलटा दे। अगर हम कहें कि नहीं मौला, हमें अपनी बीमारी की फिक्र नहीं, हम तो आपके यहां मातम करने आए हैं, इमाम खुश नहीं होते हैं, इमाम इससे गमगीन हो जाते हैं। अहले बैत की करामत को देखिए, मैंने पिछले साल भी ये वाकया पढ़ा था अलासर, उससे पिछले साल भी ये वाकया पढ़ा था जाफरी सेंटर अटलांटा में, और उससे पिछले, खैर बात बहुत लंबी चली जाएगी, मुख्तसर वाकया, लेकिन एक खास वजह से पढ़ रहा हूं, वो वजह जो मेरा असल मौजू है इमाम जमाना, उसमें ये हजरत अबू जर के कुछ अहम हालात आएंगे। हजरत अबू जर पैगंबर के अजीम तरीन साहबी, जितने भी सहाबियों की अजमत बयान करने के अल्फाज है ना, सब में अबू जर आते हैं। अरकान अरबा, फोर पिलर ऑफ इस्लाम, उसमें भी अबू जर। हवारी, पैगंबर इस्लाम के हवारी, हवारियों में भी अबू जर। मौलाए कायनात शरीतुल खमीस, खासुल खास मौला के चुने हुए सहाबी, उसमें भी अबू जर। जितने भी ग्रुप है ना असाब के, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सुनिएगा कभी मुझसे, असाब के ग्रुप बनाए गए, सब में अबू जर और सलमान और अम्मार और मिखदाद का नाम कॉमन है। अबू जर हक बात बयान करने के बिना पर जलावतन किए गए, हरेक को पता है। रब्जा में पहुंचे, जो मदीने से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक जगह, या इससे भी कम थोड़ा सा, वहां पे जलावतन एक्साइल, अब बिल्कुल वीराना, वहां कोई आबादी उस वक्त नहीं थी। बहुत हर साल में पढ़ता रहता हूं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूं। अबू जर का आखिरी वक्त करीब आ गया, घर के अबू जर जब एक्साइल पे भेजे गए तो फैमिली से तीन मेंबर्स को लेके आए, तीन ही मेंबर्स थे, एक उनकी बीवी, अबू जर बूढ़े हैं तो बीवी भी बूढ़ी, एक जवान बेटा और एक बच्ची, बहुत छोटी नहीं है लेकिन बड़ी भी नहीं। बेटा तो अबू जर के सामने वहीं मर गया, उसी का वाकया ज़हूर इमाम के लिए एक मैसेज है, तो वो बात की तकरीर। अब अबू जर ज़ईफ या बूढ़ी बीवी और एक बच्ची, अबू जर का आखिरी वक्त करीब आ गया, बीवी रोने लगी और कहा कि है अबू जर, मौत तो एक हकीकत है ना, उससे तो कोई नहीं बच सकता, अगर तुम मर गए तो हम तुम्हें कैसे दफन करेंगे, ये पत्थर वाली जमीन है, जमीन खोदना जवान आदमी के लिए भी मुश्किल है, और वो तो अपनी आंखों देखी बात बता रही है, चंद ही दिन पहले तो उनका बेटा मरा था और यहीं दफन किया गया था, क्या गुजरेगी हम पर। अबू जर ने कहा घबराओ नहीं, मेरे दफन करने वाले आ जाएंगे। कहां से आएंगे? कहा कि मुझे याद है कि एक दिन रसूल खुदा, मैं और चार पांच और सहाबी बैठे थे, रसूल ने हम सबको देखकर कहा कि तुम में से एक सहाबी जंगल में, डेजर्ट में, इस हालत में मरेगा कि कोई उसे दफन करने वाला ना होगा, तब अल्लाह एक जमात को भेजेगा जो उसके गुस्लो कफन की जिम्मेदारी पूरी करेगा। ऐ मेरी बीवी, उस ग्रुप में जितने सहाबी थे ना, वो सब एक एक करके मदीने में इंतकाल कर चुके, तो मैं अकेला बचा हूं जो जंगल में बैठा हूं, तो पैगंबर का आखिरी जुमला था कि अल्लाह एक ग्रुप को भेजेगा, तुम ऐसा करना जब मैं मर जाऊं तो तुम, बल्कि मरने से पहले ही कहा जब आखिरी सांसें थी, आखिरी सांसें, कि तुम जाके सड़क पर बैठ जाओ और वहां पे इंतजार करो, जो नजर आए उससे कहना आके मुझे दफन करे। बेवा, अभी तो बेवा नहीं हुई है, लेकिन जो बेवा होने वाली है वो बूढ़ी बीवी आंसू बहाती हुई बाहर निकली। अबू ज़र ने अपनी बच्ची को बुलाया और कहा कि बेटी, हमारा गुजर बसर एक बकरी पे होता था, उसे ज़बह करो और फौरन उसका गोश्त पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दो, और जब वो लोग आए जो मुझे दफन करने वाले, तो मुझे दफन करने से जब वो फारिग हो तो उनसे कहना कि अबू ज़र ने तुम्हें कसम दी है कि पहले हमारे मेहमान बन के ये खाना खाओ, इसके बाद यहां से जाना। पिछले साल जरा तरतीब मैंने बदल दी थी कि पहले अबू ज़र ने खाना खिलाया, कहा फिर दफन करना नहीं। नहीं, मैंने जब दोबारा देखा, ये तबकात इब्ने साद की रिवायत भी है, तारीख तबरी में भी है, कामिल इब्ने असीर में भी है, और एक इशारा मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में भी है। खैर, तो पता चला कि नहीं, वो बहुत पहले मैंने 40 साल पहले किताब पढ़ी थी ना, तो तरतीब ये थी कि पहले वो मेरा गुस्ल कफन करे और उसके बाद खाना, क्योंकि मैयत को जल्द अज जल्द दफन करने की भी तो ताकीद है ना। अब वो बूढ़ी ज़ईफ़ औरत सड़क पे बैठी, यहां बेटी बकरी ज़बह की, गोश्त चढ़ा दिया पकने के लिए, और उधर बेवा औरत ने देखा वो परेशान है कि इस सड़क पे इस वक्त कौन आएगा, क्यों, ये सड़क थी जो मक्के जाती थी और हज की तारीख एक दिन रह गया, सारे काफिले जा चुके हैं, अभी सड़क पे कोई नहीं आता जाता, सड़क सुनसान है। एक आखिरी काफिला जो थोड़ी देर से निकला था और उनको बहुत जल्दी थी हज पर जाने की, वो तेजी से घोड़े दौड़ाते गुजर रहे, हाथ बढ़ा के उनको रोका, वो रुके, ये देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पे बैठी है तो पैगंबर का सहाबी तो उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ेगा, मुनाफिकों की बात अलग। रुक गए, कहा कि हमें बहुत जल्दी है, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठी हो। कहा कि एक गरीब, एक बेकस, एक मजलूम, एक तन्हा, एक मुसाफिर, वो मर गया, उसके गुस्ल कफन की बात। कहा कौन, जवाब दिया अबू ज़र, चीखे निकल गई, गोया बिजली गिर पड़ी इस पूरे काफिले पे, पैगंबर का सहाबी अबू ज़र, इतना अजीम सहाबी अबू ज़र, और इस तरह तुम सड़क पे बैठे हुए लोगों से भीख मांग रही हो। अरे सब रोते हुए उतरे, इसमें अब्दुल्लाह इब्ने मसूद थे, पैगंबर के एक बहुत अहम सहाबी, और मालिक अश्तर थे, जिनका ज्यादा तस्किरा आता है मौला के जमाने में, लेकिन उससे पहले मालिक अश्तर का तारुफ। रोते हुए गए, जल्दी से गुस्ल कफन दिया, और उसके बाद जब ये हज पे जाने की जल्दी चलने लगे, बच्ची ने रोक लिया, कहा मेरे बाबा ने कसम दी कि जो मुझे गुस्ल कफन देने आए उनसे कहना अबू ज़र का मेहमान बनो, अबू ज़र के घर खाना खाओ और उसके बाद यहां से जाना। आंखों में आंसू आ गए, क्यों, इसलिए कि अबू ज़र के पास कफन भी नहीं था। आज आलीशान महल्लात में रहने वाले मोमिनी अबू ज़र के नाम लेकर वाकान सर एहतराम में सर झुकाने वाले मोमिनी, अबू ज़र के पास एक कफन भी न था, अबू ज़र को इन लोगों ने चंदे में एक कफन मुहैया करके दिया, अबू ज़र जैसे सहाबी। लेकिन बात बहुत फैल रही है, और ये फिर यहां से जब ये सुना तो खाना खाया और उसके बाद यहां से चले। इसीलिए इस्लाम में एक मसला है ना कि मैयत के लिए मुस्तहब है, खुद मैयत के लिए, कि वो एक वसीयत कर जाए कि मेरे मरने के बाद मेरे माल से उन लोगों को खाना खिलाया जाए कि जो मेरे गुस्ल कफन में शरीक हुए। हमारे यहाँ पास देखो पे जमातों का ऐसा सिस्टम कि जिम्मेदारी जमात ले लेती, मुस्तहब मरने वाले के लिए, गुनाह नहीं है, खराबी नहीं है कि अगर दूसरे इसमें हिस्सा ले, लेकिन असल जो इस्तेहबाब है, या बुजुर्ग कौन, या बुजुर्ग अहले बैत के पांव की खाक के बराबर भी नहीं, जब वो ये पैगाम दे रहे कि मेरी मैयत है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो इसमें शरीक हो रहे हैं मौला ही के गुलाम है ना, मौला की शान दिखा दो कि मेरे घर खाना खा के जाना होगा, और शायद अगर वो हुक्म इस्लामी ना होता कि मैयत को जल्द अज जल्द दफन करो, तो पहले खाना खिलवाते फिर अपनी मैयत के बारे में वसीयत करते। जब अबू ज़र ऐसे करीम बन रहे हैं, तो जो अबू ज़र का भी आका और मौला हो, जिसके नाम पे अबू ज़र अपने पूरे घराने को कुर्बान कर दे, वो अहले बैत। मैंने अक्सर कहा कि काफिला یعنی کربلا سے لے کے شام تک دیکھ لیجیے، غذا آتی ہے وہاں بھی یہ واقعات ہیں، غذا آتی ہے، بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور زینب کبرا پہلے دوسرے یتیم بچوں کو دیکھتی ہیں اور ان کے حوالے وہ غذا کر دیتی. جناب سکینہ کے مشہور واقعات ہیں، ڈاکٹر عائشہ غیر شیعہ بہت ہی مشہور مصر کی ایک رائٹر، جناب سکینہ پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے، شعرا آفاق کتاب ہے، اور اس میں یہ لکھا کہ یہ جناب سکینہ زندان شام کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی، وہاں غذا کیا آتی تھی، نہ ہونے کے برابر نا، لیکن وہ غذا بھی جو شام کے یتیم بچے باہر گھوما کرتے تھے، سکینہ اپنی غذا اٹھا کے ان کو دے دیتی. جب 11 محرم کو قافلہ اہل بیت کوفے سے گزر رہا تھا اور ایک بار جناب زینب کی نگاہ حبیب ابن مظاہر کی بیوہ پر پڑ گئی جو ایک مکان کی چھت پہ بیٹھی ہے، تو اس سے پہلے کہ بیوہ حبیب کچھ کہے، زینب نے کہا بیوہ حبیب میں تو تجھے ڈھونڈ رہی تھی، تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دوں گی. شہزادی آپ کو کوئی پرسہ دینے والا آیا؟ لیکن وہ اہل بیت کا طریقہ کار. تو اسی ایام محرم میں اور اس کے بھی پہلے اس عشرے میں اہل بیت اطہار اپنے کسی چاہنے والے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، اپنے کسی چاہنے والے کو بیمار نہیں دیکھ سکتے، اپنے کسی چاہنے والے کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو بڑی تاکید آئی کہ اس پہلے عشرے کے اندر اپنی دعائیں اور حاجتیں بادل ناخواستہ، ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمارا دل نہیں چاہتا اپنے لیے کچھ مانگنے کا، لیکن اگر ہم نہ مانگے تو وہ یہ سمجھتے ہیں، اہل بیت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے کریم ہونے پہ شک کیا، تو مانگو. اور اس حوالے سے اعمال عاشور میں دعائے القمہ، یہ دعائے صفوان ہے، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا. لیکن 3 روزے ماہ محرم کے بہت ہی اہم. ویسے ہی پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ مومن کو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لینا چاہیے، تو وہ صائم الدہر کہلائے گا، یعنی ایسا آدمی جس نے پورے سال روزے رکھے. کیونکہ 3 روزے ثواب کتنا ملے گا، ہر روزے کا ثواب 10 ٹائمز، 3 روزوں کا مطلب ہے کہ 30 روزوں کا ثواب ملا. آپ نے رجب میں 3 روزے رکھے، پورے مہینے کا ثواب. آپ نے ذیقعدہ میں 3 روزے رکھے، پورے مہینے کا ثواب. تو ویسے ہی ہر مہینے میں 3 روزے رکھو. لیکن محرم کے لیے خاص حکم یہ آیا، یہ خاص حکم کہ اگر محرم میں 3 روزے رکھ لو تو چاہے باقی 11 مہینوں میں نہ رکھ پاؤ روزے رمضان کو چھوڑتے ہوئے، تو یہ 3 روزے 30 روزوں کا ثواب نہیں دلوائیں گے، یہ پورے سال کے روزوں کا ثواب دلوائیں گے. یہ 354 ڈیز جو ہوتے ہیں اسلامی سال میں، اتنے روزوں کا ثواب ملے گا. مگر یہ بھی کہا کہ خالی روزہ روزے کی نیت سے رکھو کہ روزہ رکھ رہے تب بھی ٹھیک، لیکن ہر روزے کے لیے پھر ایک خاص بات بھی بتائی گئی. اب اس میں جو 3 روزے، اچھا پھر ایک حدیث اور بھی ہے کہ اگر کوئی 3 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو خالی پہلی محرم کو روزہ رکھ لے، اس کو 360 دنوں کا ثواب مل جائے گا. تو اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں اس وقت بہت گرم موسم ہے، یہ آسٹریلیا اور خاص طور پر میلبرن، بہرحال ابھی ٹھنڈا زمانہ ہے، ونٹر چل رہا. حدیث سن لیجئے ونٹر کے لیے بھی. پیغمبر نے فرمایا کہ ونٹر کا جو موسم ہے نا، یہ مومن کے لیے ربیع ہے، اس کے لیے بہار ہے. مومن کے لیے اسپرنگ کا مہینہ ہے، ونٹر کا مہینہ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہے، اور اس کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، تو پوری نیند کر کے بھی تم رات میں اٹھ کے نماز عشاء پڑھ سکتے ہو. جب رات لمبی ہوگی نا تو یہی ہوگا کہ آدمی کی نیند پوری ہو گئی، معلوم اب تک رات باقی ہے، اٹھ سکتا، نماز شب ہے، قرآن ہے، دعائیں پڑھ سکتا. گرمی میں تو رات ہی اتنی چھوٹی ہوتی کہ اپنی ریگولر نیند بھی پوری نہیں ہوتی، ایک آدھ رات شب قدر آدمی جاگ لے پورا سال. تو پیغمبر نے خاص کہا ونٹر کے لیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، بھائی آپ نے ونٹر میں روزہ رکھا تو کیا کمال کیا، رمضان کی بات نہیں ہے، رمضان میں تو یقیناً گرمی کے روزے کا بڑا ثواب ہے، لیکن عام طور پہ یہ کیا کمال کیا. بہت سے لوگ اپنے قضا روزے ونٹر میں رکھتے ہیں، گرمی میں رکھیے روزے. نہیں، پیغمبر نے کہا ونٹر مومن کے لیے اللہ کا ایک گفٹ ہے، نیکیوں کی ایک اسپرنگ ہے مومن کے لیے. راتیں بڑی کر کے اس کو رات کو جاگ کر نمازیں پڑھنے اور قرآن پڑھنے کا موقع ملا، और दिन के वक्त रोजा रखने का, तो ये तो एक हदीस में भी आया है। और फिर इस साल मेलबर्न में विंटर में भी, अभी विंटर चल रहा है, आखिरी आखिरी मरहलों में है लेकिन चल रहा। अब विंटर कहा कि एक रोजा रख लो खाली, अगर ताकत नहीं है और विंटर है तो एक ही रख लो, पूरे साल का सवाब मिलेगा। लेकिन तीन रोजे बहुत ताकीदी हैं, वैसे ही सिर्फ रोजे की नियत, लेकिन इन तीनों रोजों का एक अलग अलग बेनिफिट भी बताया गया। अलबत्ता एक बात मैं अर्ज कर दूं कि ये तीन रोजों में पहली मुहर्रम का रोजा और तीन मुहर्रम का रोजा तो कन्फर्म है, ये दो रोजे, तीसरा रोजा कौन सा है? बाद उलमा कहते हैं ये सेकेंड ऑफ मुहर्रम का है, बास कहते हैं ये सेवेंथ ऑफ मुहर्रम का है। अच्छा, पहली मुहर्रम का रोजा, इसकी अहमियत क्या है? कुरान करीम ने हजरत जकरिया, अल्लाह के एक बहुत अहम नबी जिन्हें आरे से चीरा गया था, दो टुकड़े हुए थे, जकरिया की शहादत, उनका बेटा यहिया भी शहीद हुआ, और यहिया को कई रिवायतों में आका हुसैन से शबाहत दी गई है, लेकिन बात बहुत लंबी होगी। जनाब जकरिया, तीन जगह कुरान करीम ने उनकी एक दुआ कोट की, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो इतनी दुआ मांगते थे इस खास प्रॉब्लम के लिए कि एक जगह नहीं, दो तीन जगह ये आयत आई, यानी उनकी दुआ आई है, अगर के अल्फाज अलग अलग है। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 33-34 ऐसे कुछ उसका नंबर है, 30s में, और फिर सूरह मरियम में काफ हा या ऐन साद, वहां कुरान ने कहा जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु नदाअन खफिया, काफ हा या ऐन साद करबला, काफ हा या ऐन साद सूरह मरियम की पहली आयत, काफ से मतलब करबला, तो काफ हा या ऐन साद करबला फौरन का जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, याद करो तेरे रब की वो खास रहमत अपने बंदे ज़करिया पर। और ये रहमत कब नाजिल हुई? इज नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब उसने अपने रब को लो वॉइस, निदाअन खफिया, बहुत आहिस्ता से पुकारा। हर जगह चीखना और चिल्लाना काम नहीं आता, ये खास वजह से कह रहा हूं, ये छठी सातवीं मजलिस में बात तफसील से आएगी, ये लफ्ज याद रखिएगा। यहां का इज नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब उसने आहिस्ता आवाज में अल्लाह से दुआ की, और क्या दुआ की? यहां भी आई दूसरा मौका। और सूरह अंबिया में, सूरह अंबिया की आयत इसलिए पढ़ रहा हूं कि वो तो मासूम ने एक अमल हमें और आपको बताया, इज नादा रब्बहु निदान खफिया, क्या कहा? रब्ब ला तज़रनी फर्दं वअंता खैरुल वारिसीन, आए खुदा मेरी कोई औलाद नहीं है तो मुझे अकेला ना छोड़, तू बेहतरीन वारिस व मालिक है, तुझसे औलाद मांग रहा हूं। सूरह अंबिया में ये आयत कहां आई? बहुत अहम जगह आई, इससे जस्ट बिफोर आया, जस्ट बिफोर फनादा फि ज़ुलुमात अन ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नजैनाहु मिनल ग़म व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन व इज़ नादा ज़करिया रब्बहु, बिल्कुल उस आयत आयत करीमा से मिली हुई आयत है, जब खुदा ने कहा फस्तजबना लहू, यूनुस की दुआ हमने कबूल की, और नजैनाहु मिनल ग़म, उसे मुसीबत से नजात दिलाई, फौरन का और याद करो फिर ज़करिया, यूनुस के बाद ज़करिया, उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा खुदा मुझे औलाद चाहिए। कुरान ने कहा, अब कुरान का जवाब सुनो, कुरान ने कहा बस हमने उनको तीन चीजें अता की, वहबना लहू यहया, दुआ कबूल की, हमने उनको गिफ्ट दिया यहया का, यहया उनका बेटा, कहा कि हमने उनको ये तोहफा ये गिफ्ट अता किया, और इसके बाद कुरान करीम कहता है वह असलहना ज़ौजहु, और हमने उनकी बीवी को ठीक कर दिया। जनाबे ज़करिया की बीवी बांझ थी, क्या कहते, बैरन, औलाद नहीं हो सकती थी, लेकिन कहा कि दुआ मांगी तीन खुदा के बाद, फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल की, पहला ये गिफ्ट है दुआ कबूल होना, वह वहबना लहू यहिया, दूसरा गिफ्ट है यहिया दिया, और तीसरा गिफ्ट है कि उनकी बीवी को ठीक कर दिया। अच्छा, अब आयत खत्म कहां हो रही है? खुदा कह रहा क्योंकि ये लोग तीन काम करते थे, अब खुदा वजह भी बता रहा है, इन्नहु कानु युसारिऊना फिल खैरात, ये नेकी के काम में हमेशा जल्दी करते, जल्दी नहीं, आगे आगे होते, नेकी का कोई प्रोजेक्ट होगा सबसे आगे ये लोग नजर आएंगे, ये कुरान की आयत, खाली जनाब जकरिया का लफ्ज नहीं आया है, कानू जकरिया और उनकी बीवी और उनके खानदान के ये लोग नेकी के काम में आगे आगे होते हैं। हमारे यहाँ नेकी के काम अगर कोई करता भी है तो कितना बादले नाखास्ता। हाँ, कोई गुनाह का काम कराना हो, कोई ऐसे मुहिदे पे दस्तखत कराना हो, कोई पिटीशन गुनाह की माशरे में फैलाना हो, हर आदमी आगे बढ़ के हिस्सा लेने को तैयार। कहा कि इस खानदान में तीन खसूसियतें, जो सारे ऊन फिल खैरात, ये नेकी के कामों में सुरात करते थे, सबसे आगे, जहां कोई नेकी का प्रोजेक्ट नहीं सबसे आगे आपको नजर आएगी। और ये दुआ मुसलसल करते हैं, रगबन व रहबा, रगबन व रहबा, होपफुली एंड फियरिंग, अल्लाह से उम्मीद भी करते हुए अल्लाह से डरते हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेलबर्न में आजकल माहौल वो बनाया जा रहा है कि खौफ खुदा हमारे दिलों से निकाला जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है डरने की क्या जरूरत है, कोई भी गुनाह कर लो तुम तो पक्के पकाए सीधा सीधा बगैर किसी अजाब के जन्नत में जाओगे, धुले धुलाए। तो खौफ खुदा दिलों से निकाला जा रहा, जो पहले जरा डरता भी था ना, उसका डर खत्म किया जा रहा। तो अब कुरान कहता है कि जकरिया की दूसरी बड़ी खसूसियत ये थी कि वो अपने रब को पुकारते हैं, रगबा होपफुली, उम्मीद है उनको अल्लाह से, उम्मीद अल्लाह ही से, वह रहबा लेकिन डरते भी हैं। आमाल को देखते हैं तो डरते हैं, रहमत को देखते हैं तो उम्मीद होती। और फिर कुरान ने कहा वकानु खाशीन, और वो बहुत ही हम्बल है अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में हम्बल। तो कहे जनाब जकरिया मेरा मौजू नहीं। इमाम मासूम सवाल करते हैं शबीब से, क्या शबीब आज पहली मुहर्रम का दिन है, ये भी आठवें इमाम की बहुत मशहूर हदीस है, आज पहली मुहर्रम का दिन है, तुम मेरे पास आए हो, क्या तुमने रोजा रखा? रावी ने कहा मौला आज का रोजा, ये रमजान तो नहीं, आज का क्या रोजा? कहा आज तो बहुत अहम रोजे का दिन। ये जो कुरान ने जकरिया के लिए कहा कि हमने उसकी दुआ कबूल की, फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल की, वहबना लहू यहिया, उसको बेटा अदा किया, वासलाना हो सौ जो, और उसकी बीवी जब मेडिकली अनफिट थी उसको हमने ठीक कर दिया। पता है कौन सी तारीख को जकरिया ने दुआ मांगी? पहली मुहर्रम। जकरिया की दुआ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आले इमरान के सूरे में आई, मरियम के सूरे में आई, अंबिया के सूरे में आई, और ये पहली मुहर्रम को दुआ कबूल हुई। तो औलाद से रिलेटेड कोई मसला, और उसमें फिर ये मैंने पूरी आयत क्यों पढ़ी, ताकि एक तो इन शॉर्ट हमेशा पहली मुहर्रम को मैं कहता हूं कि जी वो पहली मुहर्रम को रोजा रखे औलाद के लिए बहुत अच्छा, लेकिन असल जो मैसेज है वो खाली औलाद की हद तक नहीं, का हत्ता अगर कोई मेडिकली प्रॉब्लम भी इतना बड़ा आ रहा है कि बीवी अनफिट है, असलहना, हमने उसकी इसलाह कर दी, हमने उसको ठीक कर दिया, जाओ जाओ उसकी बीवी को, तो औलाद खाली औलाद नहीं होती, ये दुआ कबूल नहीं होगी, औलाद से रिलेटेड हर दुआ। बहुत से लोगों को मुझे पता है यहाँ पे मेडिकल प्रॉब्लम भी ऐसे कंसीव नहीं हो पाते हैं वो लोग, लेकिन हर किस्म का मसला पहली मुहर्रम का रोजा, और तीसरी मुहर्रम का रोजा है हर मुसीबत और परेशानी से बचने के लिए। इमाम उसकी भी दलील दे रहे हैं, वक्त मेरे हाथ से निकला जा रहा है, तो मैं वो जनाब जकरिया को बहुत तफसील से मैंने बयान किया, तो अब मैं क्योंकि उसमें तीन चार और भी साइड के मैसेजेस थे, लेकिन अब फास्ट कर दूं अपनी स्पीड ताकि आज का मौजू मुकम्मल हो। तीसरी मुहर्रम, इमाम ने कहा पता है ये कौन सा दिन है? जिस दिन हजरत यूसुफ को 14 साल की कैद के बाद अल्लाह ने कैदखाने से रिहाई दिलवाई। नबी खुदा 14 साल जेल में रहा है, 14 साल दुआ मांग रहा है। आखिरी जो दुआ मांगी वो ये थी कि आए खुदा, बहुत ये भी बहुत अहम वाकया है, टाइम नहीं है मेरे पास, पता नहीं शायद मैं मजलिस के बीच में कुछ बातों को जो इतनी जरूरी नहीं ज्यादा फैला देता हूं, आखिर में टाइम कम हो जाता। जनाब यूसुफ की वो दुआ जो कैद खाने से रिहाई का सबब बनी कि आए खुदा मैं तुझे वास्ता देता हूं अपने बुजुर्गों का, इब्राहिम का और याकूब का। तो इमाम ने कहा यह दुआ मांगी, और कब मांगी? थर्ड ऑफ मुहर्रम को, उसी दिन उनकी रिहाई हो गई। वो बादशाह ने ख्वाब देखा था रात को, और वो फिर बुलाया गया दरबार में, लेकिन इमाम ने कहा तुम जब दुआ मांगो ना तो यूसुफ की दुआ को चेंज कर दो। यूसुफ ने कहा कि मैं तुझे वास्ता देता हूं बे आबाई, अपने बुजुर्गों का, इब्राहिम हो, इसहाक हो, याकूब, कहा तुम जब ये दवा मांगो तो ये चेंज कर दो वास्ते और कहो कि मैं तुझे वास्ता देता हूं बे मोहम्मद व अली व फातिमा व हसन व हुसैन वल अइमत अलैहिम सलाम। ये तीन मुहर्रम यूसुफ की वो 14 साल की कैद खत्म हो रही है दुआ के नतीजे में, तो इस दिन रोजा रखिए और फिर कोई दुआ मांगिए। ये बहुत इस्लाम ने तीन मुहर्रम के रोजे का दायरा बहुत वसी कर दिया। अब बचा दो मुहर्रम का रोजा का, रिस्क का, रोजी का, जॉब का, बिजनेस का, जिसको प्रॉब्लम हो, दो मुहर्रम का रोजा उसके लिए बहुत अहम है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बाज रिवायतों में 7th ऑफ मुहर्रम है, शायद दोनों डेट सही हो। दो मुहर्रम कौन सी तारीख है? जब अहले बैत, जब हुसैनी काफिला करबला आया और भूख और प्यास का इम्तिहान शुरू होने वाला था, उनके भूख और प्यास के इम्तिहान के तुफैल हमको रोजी मिलती है, रिस्क मिलता है, हमारे दस्तरखान पे रोटी आती है, हमारे बच्चों के पेट भरते हैं। और शायद 7 मुहर्रम की तारीख सही है कि उस दिन पानी बंद हुआ था। तो रिस्क के हवाले से 2 मुहर्रम या 7 मुहर्रम, या का मतलब है किसी एक दिन भी रोजा रख ले तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगा। दोनों का ताल्लुक अहले बैत की भूख और प्यास से। ये तीन रोजे कल के इतबार से, कल से शुरू होने वाले, बहुत अहम है। और जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग मुसलसल 3 रोजे ना रख सके, तो शायद उनके लिए इस्लाम ने 2 मुहर्रम का गैप देके कहा कि उसका अल्टरनेट 7 मुहर्रम भी। अच्छा, अब ये माह मुहर्रम की वो बरकतें हैं जो लेने का हमारा दिल नहीं चाहता, लेकिन हुसैन खुद ये चाहते हैं। और परवरदिगार का जो हुसैन से वादा, कि हुसैन तूने मेरे नाम पे अपनी सारी औलादें कुर्बान कर दी, अब तेरे नाम पर जो औलाद मांगेगा पहली मुहर्रम को मैं दूंगा। हुसैन तूने मेरे नाम पर अपने सकीना और असगर की प्यास बर्दाश्त की, अब तेरे नाम पे, अब जो मेरा रोजा रखकर तेरे नाम पे मांगेगा मैं उसको रोजे दूंगा। अरे हुसैन तूने खुद अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे नाम पर, अब 3 मुहर्रम को रोजा रख के बड़ी से बड़ी मुसीबत और परेशानी वाला मुझे पुकारेगा, मैं उसकी परेशानी दूर करूंगा। हमारा दिल नहीं चाहता लेकिन हुसैन खुश होते हैं इसमें। लेकिन एक आखिरी जुमला कह के फिर मैं असल मौजूद जरा सा बस स्टार्ट करूं, बाकी बातें बाद में होंगी। और वो ये कि इस वक्त सारी मखलूकात को रोजी और रिस्क किसकी बरकत से मिल रही? वह भी युम नहीं रोज कल वरा का, ये इमाम, ये वो हदीस में पढ़ रहा हूं जो हर जुमे के खुतबे में पढ़ी जाती है, हर जुमे को आपको याद दिलाई जाती है। वह भी युम नहीं रोज कल वरा, इमाम जमाना वो है जिसकी बरकत से सारी मखलूकात को रोजी मिलती है, खाली हमारे और आपके बच्चों को नहीं, समंदर के गहराइयों में रहने वाली मछली को भी अगर रोजी आता होती है वो इसी इमाम जमाना की बरकत से। बल्कि वो बेवजूद ही, उसके वजूद की वजह से जमीन और आसमान कायम है, वरना रोजी तो छोड़िए हम सांस भी लेने के काबिल ना हो अगर वो जमाने का इमाम ना हो। करबला ने इमाम जमाना के हवाले से बहुत अहम पैगाम दिया। चुनाचे ये हमारा मौजू कल से शुरू होगा, लेकिन इसमें कल की पहली मजलिस में थोड़ी सी मजालिस के हवाले से हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज ये आपके सामने आएगी। और मैं अपने इस जुमले को मिला देता हूं गदीर के जुमले से, नहीं चले गदीर का जुमला इंशाल्लाह कल। आज एक आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं, दुआ, रोजे, हुसैन के मकसद को याद करना, और फिर एक बहुत अहम पैगाम, असल में तो ये पैगाम जाकिरीन के लिए। अच्छा, मैं इल्म के एतबार से तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन उम्र के एतबार से मैं इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में इतना सीनियर माना जाने लगा हूं कि मुझे हक है अपने लिए भी ये चीज एज एडवाइस लेने का, और जितने और मेंबर पे जाते हैं, लेकिन साथ में इसमें सुनने वालों की जिम्मेदारी भी है, वो कल आएगी। आज सिर्फ मुख्तसर वाक्य, ये आज ही क्यों पढ़ रहा हूं जबकि वक्त तकरीबन पूरा हो गया? क्योंकि इसका ताल्लुक चांद रात से, मसला ये है कि इसका ताल्लुक चांद रात से, और ये चांद रात इस वक्त टॉप 5 मराजे में से एक है आगाए वहीद खोरासानी। 105 साल की उम्र है उनकी और बहुत तवील अरसा उन्होंने नजफ और कुम का हौजा देखा। वो ये वाकया नकल कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि किसी और का, वो अपना वाकया बता रहे हैं, शेख वहीद खुरासानी का। और रोते भी हैं क्योंकि इसमें कुछ मैसेजेस उनके लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं। फरमाते हैं कि आगा अब्दुल हादी शीराजी एक बहुत बड़े मर्जे थे, लेकिन थोड़ी सी हार्ड लग ये हुई कि इनका जो जमाना था बिल्कुल आगा बुरोजर्दी के साथ था। आगा बुरोजर्दी का इंतकाल 1961 में हुआ, इनका इंतकाल 62 में, यानी दोनों की मर्जियत साथ साथ चल रही थी। और आगा बुरोजर्दी की शख्सियत वो इतनी ज्यादा फेमस थी और इतने मुकद्दस इंसान थे कि इंडिया और पाकिस्तान की हद तक किसी और मर्जे का नाम सामने नहीं आया। वरना एक क्लासिकल एग्जाम्पल है आगा अब्दुल हादी शीराजी। और थोड़ा सा प्रॉब्लम उनके साथ ये हुआ कि वो नाबीना हो गए थे अपनी उम्र के आखिरी 10-12 साल में। कोई फ्रेंच आई सर्जन इराक में आया था, उसने इतनी लोगों की आंखें तबाह की थी, जिसके बाद इराक में जुमला मशहूर हो गया था कि इलाज कराओ तो हमेशा इंग्लैंड के डॉक्टर से, किसी फ्रांसीसी डॉक्टर से इलाज न कराना। तो उसकी लपेट में ये भी आ गए थे। तो खैर, आगा अब्दुल हादी शिराजी इश्तिहाद का दर्स देते थे और खुद शेख वहीद खुरासानी कहते हैं कि मैं उनकी कुर्सी पे बैठ के दर्स देते थे, वो बिल्कुल उसके बराबर में बैठा करता था कि उनका क्लोजेस्ट स्टूडेंट बिल्कुल उनके करीब। अच्छा, आगा अब्दुल हादी शिराजी के इस हवाले से कुछ और वाकयात थे, उनकी पर्सनैलिटी की अहमियत बताना थी लेकिन टाइम नहीं। वो आगा वहीद खुरासानी ने एक ही जुमला कहा, क्योंकि जिन लोगों को सुना रहे थे वो सब उलमा थे कुम के, हादी शिराजी अगर कोई ख्वाब देखे तो उस ख्वाब की क्या अहमियत होती है। अब्दुल हादी शिराजी के साले यानी उनकी बीवी के भाई बहुत मशहूर दो शख्सियतें थी, सैयद जाफर, सैयद मेहंदी। सैयद मेहंदी के दोनों बेटे सैयद मोहम्मद शिराजी और सैयद सादिक शिराजी, जिनकी करबला के लोग बहुत ज्यादा तकलीद करते हैं, और ये मदरसे खानदान सब उन्हीं के भांजे वांजे। तो खैर, सैयद मोहम्मद शिराजी भी अपने जमाने में मर्जे रहे, बहुत पुराने नहीं हैं, तो हमारे जमाने के, और सैयद सादिक शिराजी तो आजकल भी हैं। इनके वालिद मेहदी शिराजी और दूसरे भाई सैयद जाफर, ये दो अब्दुल हादी शिराजी के बरादर निस्बती, यानी उर्दू में लफ्ज अच्छा नहीं है, बीवी के भाई। अब वो फरमाते हैं आगा वहीद खुरासानी वन ऑफ द टॉप शिया मर्ज एट द करंट टाइम पीरियड, ये सब नजफ में रहते थे। फिर वो तेहरान आए सैयद जाफर, और तेहरान आने के बाद वहां बीमार पड़े, इंतकाल हो गए। फिर ये खबर नजफ पहुंची, जमाना तकरीबन खुद आगा अब्दुल हादी शिराजी 62 में इंतकाल हुआ, यानी 60 साल तो ये सीधे सीधे हो गए, उससे भी पहले की बात। टेलीफोन, इंटरनेट, ये सारी चीजें तो थी नहीं। तो ये खबर जब नजफ पहुंची, शेख वहीद खुरासानी कहते हैं कि अगले दिन जब दर्स दिया आगा अब्दुल हादी शिराजी, अच्छा अब्दुल हादी शिराजी और आगा खुई के बारे में हमेशा नजफ में ये कंपटीशन रहा कि इनमें से तकलीद किसकी करेंगे, कौन ज्यादा बड़ा। फिर आगा खुई को इनके बाद 30 साल मजीद मिले। तो अब्दुल हादी शिराजी कहते हैं कि शागे शेख वहीद खुरासान कहते, मैंने उनके दर्स में इतने बड़े बड़े मुश्तहदीन को मुश्तहद बनकर भी शागिर्दी के तौर पे देखा, लेकिन वक्त नहीं। कह रहे जब वो इनके साले का इंतकाल हुआ और खबर उसकी आई नजफ में, तो नेक्स्ट डे जब दर्स दिया तो कुर्सी पे थे, तो फिर भी मेंबर है कुर्सी पे थे। अब्दुल हादी शिराजी झुके और मेरे कान में मुंह रखकर एक वाकया उन्होंने सुनाया, मुख्तसर अजीम तरीन मर्जे, आगा खुई से भी बड़े थे और आगा बुरोजर्दी की टक्कर के थे। वाकया ये सुनाया कि कल के सैयद जाफर की जिंदगी में एक दफा ऐसा हुआ कि मैं सोया, जब मैं सोया रात को, हर रात को सोते थे, हर आदमी सोता, मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब ये देखा कि जैसे ये हमारा घर, ये सब साथ साथ ही रहते थे करीब करीब, उसके बाहर दो कुर्सियां रखी और बार बार वो कह रहे हैं कि शेख वहीद खुरासानी जो आज के अजीम मर्जे, वो बार बार कह रहे हैं कि ख्वाब किसी आम आदमी ने नहीं देखा, अब्दुल हादी शिराजी ने अपने खुद देखा कि दो कुर्सियां रखी। थोड़ी देर गुजरी और हमने ये नजफ है, नजफ मैंने देखा कि सरकार सैयद शहदा इमाम मजलूम तशरीफ लाए और उनके बिल्कुल पीछे आगा अबुल फजल हजरत अब्बास अलमदार आ रहे हैं और आगा अब हजरत अब्बास के हाथ में, हजरत अब्बास के हाथ में एक रजिस्टर है। वो दोनों आए, वो जो बाहर दो कुर्सियां रखी हैं, एक पर आका हुसैन बैठ गए, एक पर आका हजरत अब्बास बैठ गए और मैं बिल्कुल उनके करीब खड़ा हूं। इमाम हुसैन ने आका अब्बास से कहा कि ये रजिस्टर खोलो। मैंने रजिस्टर खोला, देखा उसमें नाम ही नाम लिखे, एक लाइन, एक लिस्ट है बहुत लंबी, अजीम तरीन आज का मर्जे, वन ऑफ द टॉप फाइव शिया मर्जे हमारे जमाने के, वो लिस्ट आगा अब्दुल हादी शिराजी जो इनसे भी बड़े मर्जे थे वो कहते मैं पढ़ रहा हूं। और उस लिस्ट पे लिखा है, नहीं कुछ नहीं लिखा, वो लिस्ट है। आगा इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि इस लिस्ट में जो एक नाम है ना, ये नाम काट दो, काट दो। आगा अब्बास ने कलम निकाला और उस लाइन पे, उस नाम पे लकीर पे, और फिर आका हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा, कैसे बताऊं कि कितना अजीम मर्जे ही वाकया सुना रहा है और उस जिसने ये ख्वाब देखा वो उससे भी कितना बड़ा मर्जे, का इनाम काट दिया, अब इसकी जगह सैयद जाफर का नाम लिख दो, खुद ख्वाब देखने वाले मर्जे हादी शिराजी के साले। हजरत अब्बास ने वही कलम से सैयद जाफर का नाम लिखा और मेरी आंख खुल गई। आगा अब्दुल हादी शिराजी कहते हैं रात के 12:30 एक बजे का वक्त होगा, पूरी रात में इंतहाई बेचैन और परेशान रहा कि मैंने देखा क्या, एक नाम कटा और फिर नाम मेरे साले का यहां पे आ गया, क्यों, आखिर ये सब चीजें क्या है, पूरी रात बेचैनी से गुजरी। सुबह के वक्त नमाज के बाद वो सैयद जाफर आए मेरे घर, हम लोग सुबह तकरीबन साथ ही नाश्ता करते, देखा तो घबरा गया, कहा कि ये ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें सुर्ख है, पूरी रात आप जागे हैं, तबीयत आपकी खराब है, खैरियत तो है, इलाज वगैरह तो नहीं? कहा नहीं, ये मसला नहीं, पहले ये बताओ कि कल रात को तुमने क्या काम किया। कहा आखिर सवाल का मकसद क्या, वो वाकया सुना है, वो साले बहनोई जो बहनोई है वो तो इतने अजीम मर्जी, पूरा वाकया सुना है, वो नाम कटा, तुम्हारा नाम लिखा, तुमने कल कोई जरूर एक काम किया। कहा कि हां सिर्फ एक काम किया कि कल जब मैं अपने दस्तूर के मुताबिक नजफ में रहने वालों का तरीका यह कि मगरिबैन की नमाज मौला के हरम में पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के बाहर आए तो खबर फैल गई कि चांद हो गया, चांद रात मुहर्रम की, कहा चांद हो गए, इंतजार होता है ना सूरज डूबने के बाद चांद हो तो इतनी देर में नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के आया तो नजफ में खबर आ गई कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, आज पहली रात जो इस वक्त मेलबर्न में है, पहली रात चांद रात हो गई है, मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है और अब वो जो कहा काले अलम लगाना है और सिया बैनर, उस जमाने में इतने सारे इंतजाम तो होते नहीं थे, 70 साल पुरानी बात। जब मैं बाहर आ रहा था और चांद की खबर फैली तो मेरे जहन में एक हदीस आ गई और मैंने सोचा हदीस के पहले हिस्से पे तो मैंने जिंदगी भर अमल किया, दूसरे हिस्से में कभी अमल नहीं किया, क्योंकि जो हमारे यहाँ बड़े बड़े मुश्तहिदीन और मराजी होते हैं वो आमतौर पे मजालिस नहीं पढ़ते, ये काम तरीक़ेकार है हमारे यहाँ का। हदीस क्या है, मन बका अलल हुसैन और अब का, जो हुसैन पे रोए या रोलाए। मैंने सोचा कि मैंने इतना इल्मे दीन हासिल किया, इतनी मालूमात मेरे पास, रोया तो मैं सारी जिंदगी, कौन मोमिन ऐसा है जो अपनी जिंदगी में आका हुसैन की सफे अजा पे ना बैठा हो, तो सारी जिंदगी में रोया हूं, आज तक मैंने कभी रोलाया नहीं लोगों को, ये पैगाम बशारत भी है, खुशखबरी और डरावा भी है इसके अंदर, تمام علماء جو مجلسیں پڑھتے ہیں، تمام ذاکرین، تمام خطبہ، تمام نوحہ خان، تمام سلام پڑھنے والے، تمام مرثیہ پڑھنے والے، خالی علماء کی حد تک بات نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ بس میں نے کہا کہ مجھے رولانا ہے، لیکن اب جس آدمی نے زندگی میں مجلس نہ پڑھی ہو، اگر مجلس پڑھے گا تو اس کے سننے کون آئے گا مجلس؟ اور پھر اگر آج کا زمانہ ہو کہ آج تو مارکیٹنگ چلتی ہے نا، کس کی زیادہ شہرت، سبسکرائبز کتنے زیادہ ہیں، ویوز کتنے زیادہ ہیں، لائک کتنے زیادہ ہیں، ٹیمیں بنائی جاتی ہیں. اور واقعا جس نے زندگی میں کبھی نہ پڑھا اور آج چاند رات، فوری طور پہ کیا انتظام کروں؟ میں نے کہا نہیں، میں اس حدیث پہ بھی عمل کروں گا، روتا تو رہا، رولاؤں گا بھی. تو سیدھا میں اپنے دوست کے گھر میں گئے. بہت سی چیزیں تو آج کے بچے، تو بچے بڑوں کی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ پہلے کتاب کتنا مشکل کام تھا لینا. دوست کے گھر گیا، ہو جانے کے بعد کا تمہارے پاس آغا حسین کے مصائب پہ کوئی کتاب ہے؟ کتابیں اتنے آسان نہیں تھی جیسے آج کل ہیں کہ آپ دے رہے ہیں اور لوگ لینے کو تیار نہیں. اس نے کہا بس علامہ مجلسی کی جلاء العیون ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا، مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے، انٹرنیٹ پر زیارت، آن لائن بکس کے اوپر پوری پی ڈی ایف میں بھی ہے، بہرحال اچھی کتاب. وہ لے کے میں آیا، گھر آیا، اور تو کوئی نہیں تھا، بیوی کو بٹھایا، بچوں کو بٹھایا اور کہا کہ میں اس میں سے کربلا کے واقعات پڑھ رہا ہوں. یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اپنی طرف سے بنا بنا کے نہیں، جو کتاب میں علامہ مجلسی نے لکھا. کتاب میں نے کھولی، مجتہد لیول کا آدمی ہے یہ، مرجع نہیں ہے، شاید مجتہد بھی نہ بنے ہوں، حجت الاسلام کے آخری اسٹیج پر ہوں، لیکن کا کتاب وہاں سے مسائب پڑھے. ہم میں بھی رویا، بیوی بھی روئی، بچے بھی روئے. بس یہ ایک کام تو میں نے کیا. تب آقا حادی شیرازی کہتے ہیں مجھے یاد آیا اس لسٹ میں جتنے نام تھے، یہ سارے وہ نام تھے جو مجلسے پڑھنے والوں کے نام. اللہ اللہ، اتنی عظمت ہے ان لوگوں کی کہ آقا عباس وہ رجسٹر لے کے چلتے ہیں جس میں مجلس پڑھنے والوں کے نام ہوتے ہیں. اتنا ہوتا ہے مجلس، اتنی بڑی فضیلت ہے مجلس پڑھنے والوں کی. لیکن فوراً خود شیخ وحید خراسانی بھی روئے اور کہا کہ آقا عبدالحادی شیرازی بھی جب واقعہ بتا رہے تھے روئے، کہا کہ اس میں نام لکھا آقا عباس نے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن کتنا بدقسمت وہ آدمی ہے جس کا نام لکھ کے کاٹا گیا. اس پہ بھی تو غور کرے نا کہ نام لکھ دیا گیا. اب مجلس کا جو میرا آج کا موضوع تھا اس سے ایک جملے میں ربط ملائیے، نام لکھا گیا. اور کس نے نام لکھا؟ جو کریم ہیں، جو ہر ایک کو دیتے ہیں. پھر کوئی ایسی غلطی تو کی ہے نا مجلس پڑھنے والے نے کہ اس کا نام لکھنے کے بعد اس لسٹ سے کاٹ دیا گیا. نام نہ لکھا جائے تو پھر بھی آدمی صبر کر لے کہ مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں، لیکن کتنا بدقسمت ہوگا کہ جس کا نام آقا حسین کے حکم سے کاٹا جا رہا ہے کہ ہمارے ذاکرین اور ہمارا بیان کرنے والوں میں اس کا نام نہیں ہونا چاہیے. اور آج جو ماحول بن گیا ہے، جو موضوعات بن گئے ہیں، جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ انشاءاللہ کل سے، یہ ایک ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے. کیسی مجلس ہونی چاہیے، کیسی مجلس پڑھنی چاہیے، کیسی مجلس میں شریک ہونا چاہیے، کیسی مجلس کروانا چاہیے، یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے. اور چونکہ آج کل پاکستان کے حالات تو اتنے زگرگوں ہیں کہ یوٹیوب پر آپ حجت الاسلام مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کی مسلسل فریاد سن رہے ہوں گے حالات کی وجہ سے. تو بہت اہم اس واقعے کے دونوں پہلو، فضیلت کتنی ہے ذاکر امام کی، اس کی توہین کرنا حرام، معصوم کی حدیث سے اس کی غلطیاں نظر انداز کرو، وہ معصوم نہیں ہے لیکن معصوم کا خدمت گزار، تم کیا بیچتے ہو اس کے سامنے. اور دوسری جانب اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی. بہت مختصر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، کسی کو برا لگے تو پہلے سے معذرت کر لوں کہ ممبر دین بیچنے کا ذریعہ نہیں بنے، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں. آج تھوڑا سا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا جو عموماً میرے ساتھ ہو جاتا، مگر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا کے حوالے سے مجلس پڑھنے والے کی اتنی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس پڑھنے والوں میں سب سے پہلا نام تو خود اللہ کا. آقا حسین کی پہلی مجلس کس نے پڑھی؟ قال اللہ عز و جل، جب آسمان پر اللہ نے ملائکہ کو جمع کر کے مصائب حسین بیان کی، اور ایک بار بیان نہیں ہوئے، जब आदम के ऊपर इम्तिहान आया और आदम ने पूछा कि करबला में क्या हुआ, हुसैन के मसाहिब आए। जब नूह की कश्ती करबला के मैदान में एक मर्तबा डगमगा गई, अल्लाह ने बताया करबला में क्या होने वाला। जब इब्राहिम के चोट लगी तो बताया क्या हो। जब इस्माइल घोड़े से गिरे करबला के मैदान में, हर साल ये रिवायतें आप सुनते हैं। जब हजरत मूसा का पांव जख्मी हुआ, ये सारे वाकयात है ना। और हर बार हर नबी ने डायरेक्ट पूछा अल्लाह से, इस मैदान का नाम क्या है? करबला। ये क्या इम्तिहान हमसे लिया गया? कहा इसलिए कि यहाँ हुसैन पर ये मुसीबत गुजरेगी। और दूसरा जाकिर करबला के मसाहिब का खुद पैगंबर इस्लाम जो अपने नवासे के मसाहिब बयान कर रहे हैं। और तीसरा जाकिर जिब्राइल है जो विलादत है हुसैन के रात वो सारे मसाहिब को बयान कर रहा। और ये सिलसिला चलता है आका हुसैन के मसाहिब में एक नाम आता है मौला अली का। जब सिफिन से वापसी में करबला से गुजरे थे, वो शेर वाला वाकया, फिजा का शेर, उस वक्त मौला गुजरे थे ना करबला से, मौला ने फजाइल मसाइब बताए। अब शहजादी फातिमा, और फिर इसमें आखिरी नाम जो हमारे पास आया, आखिरी तो नहीं, आखिरी तो नहीं, वो तो कयामत तक चलेगा। बल्कि मैं कह दूं कि आखिरी नाम किसका आएगा हमको अभी से पता, इमाम जमाना का आएगा जी, मसाहिब पढ़ेंगे। लेकिन खास जब करबला का वक्त बहुत करीब आ गया तो मसाहिब करबला पढ़ने वाला कौन? खुद मेरा आका हुसैन है। मैं वो रिवायत आपको याद दिला रहा हूं जो चांद रात की रिवायत, यानी चांद रात की मजलिस में पढ़ी जाती है। और वो ये है कि जब वो रजब के महीने की वो आखिरी तारीखें आई, जब हाकिम शाम मुआविया की मौत की खबर आई और आका हुसैन से यजीद की बैत मांगी गई, और आका हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं, एक मरतबा काफिला तैयार किया जा रहा, और अजीब शान का ये काफिला तैयार हो रहा, क्यों ना हो, रसूल का घराना जा रहा, अली और फातिमा की बेटियां जा रही, हुसैन के अहले हरम जा रहे, और खाली यही नहीं, इंतजामात की निगरानी करने वाला कायनात का सबसे बड़ा गैरतमंद अब्बासी अलमदार मौजूद। बहनों और माओ के पर्दे का ख्याल करने वाला 18 साल का वो शेर नर अली अकबर मौजूद। एक अजीब शान के साथ काफिला तैयार हो रहा है, और हुसैन एक मरतबा बैतुल शरफ में आए ताकि खानदान के बुजुर्गों को अलविदा कहें। बहुत ज़ईफ हो चुकी है हुसैन की सगी फूफी उम्मे हानी। जैसे ही आका हुसैन को देखा कि हुसैन ने सफर का लिबास पहना, घबरा के कहा, बेटा हुसैन क्या कहीं सफर का इरादा? हुसैन ने सर झुका के कहा कि हाँ फूफी, मैं मदीने से एक दूर दराज के सफर पे जा रहा हूं। उम्मे हानी ने तड़प के कहा, बेटा इन तारीखों में मत जाओ, क्योंकि मैं 3 दिन से जिनों के रोने की आवाज सुन रही हूं। तो जिनों में भी है मसाहिब हुसैन पढ़ने वाला जो पढ़ पढ़ के जिनों को रोला रहा। आका ने सर झुका के कहा, लेकिन फूफी अम्मा मेरा जाना जरूरी। कहा कि नहीं नहीं, ये वैसी ही आवाज है जैसी मैंने उस दिन सुनी जब तेरा नाना इस दुनिया से गया, और ये वही रोने की आवाज है जो मैंने उस दिन सुनी जिस दिन तेरी मां फातिमा जहरा इस दुनिया से रुखसत हुई थी। ये वही आवाज तो है जो मैंने उस दिन सुनी जिस दिन तेरे बाबा के सर पे जरबत लगी थी। बेटा जब हसन इस दुनिया से गया तब भी आवाज, तू इस वक्त न जा। कहा, नानी मगर क्या करूं, खुद नाना से एक वादा किया है उसे पूरा करना। बस ये मोमिन यहां खामोश, पता चल गया हुक्म रसूल है, खामोश। नानी एक बार फूफी को अलविदा कह के आखिर में उम्मे सलमा से मिलने आई। उम्मे सलमा को एक अमानत देना, अपनी बेटी सुगरा। सबसे आखिर में आए, उम्मे सलमा की निगाह पड़ी, एक मरतबा तड़प के कहा, बेटा ये सफर का लिबास कहां का इरादा? ये सवाल उम्मे हानी ने नहीं किया था, उन्होंने तो कहा था कोई भी सफर ना कर। उम्मे सलमा ने कहां का इरादा? नानी मैं इराक की जानिब जा रहा हूं। बस एक बार तड़प गई उम्मे सलमा, पैगंबर की बेवा हैं, खदीजा ताहिरा के बाद अफजल तरीन बीवी हैं, फातिमा जहरा को माँ की तरह पालने वाली हैं। एक मरतबा तड़प के कहा, बेटा कहीं भी चले जाए इराक न जाना, क्योंकि मैंने तेरे नाना से सुना था कि जब मेरा हुसैन इराक का इरादा करे तो इस तरह उसे रुखसत करना जैसे मरने वालों को रुखसत किया जाता। आका हुसैन ने सर झुकाया और कहा कि नानी, आपने तो खाली इराक का नाम सुना था ना नाना से, कहिए तो मैं आपको दिखा भी दूं इराक की जमीन। उम्मे सलमा तलब के कहती है, बेटा जरा जल्दी से मुझे वो जमीन दिखा जहां तू जा रहा। हुसैन ने एक मरतबा अपना हाथ उम्मे सलमा की आंखों पे रखा और उम्मे सलमा ने देखा कि मंजर बदल गया, मदीना गायब हो गया, जमीनें सामने से हटी, आखिर में एक सहरा आ गया है। एक ऐसा सहरा जहाँ जलती रेती है, जहाँ जलता सूरज है। इस सहरा में एक बहुत बड़ा लश्कर एक तरफ नजर आ रहा और दूसरी जानिब कुछ खेमे लगे हुए हैं और जमीन पे कुछ लाशें पड़े हुए हैं। उम्मे सलमा की निगाह वो खून बहते हुए लाशों पे पड़ी। एक बार एक लाशे पे निगाह पड़ती है, तड़प के कहती है, ले बेटा ये किसका लाशा है जिसका सारा बदन अलग अलग टुकड़ों की शक्ल में नजर आ रहा। वो एक हुसैन सर झुका के कहते हैं, नानी ये मेरे भाई हसन का कुल बदन 13 साल का कासिम है जो मैदान करबला में घोड़ों की टापों तले पामाल होगा। उम्मे सलमा भी चीख कर रोना चाहती है। एक मरतबा निगाह इससे भी ज्यादा दर्दनाक मंजर पर पड़ी। कहा, बेटा और ये कौन नौजवान है जो जमीन पे गिरा एड़िया रगड़ रहा है और उसका एक हाथ उसके सीने पर है, कलेजे से बर्ची का टूटा हुआ फल तो मुझे यहां से नजर आ रहा। एक बार हुसैन सर झुका के कहते हैं, नानी ये आपके हुसैन का वही अकबर है जिसे आपने गोदियों में पाला है। हाय मेरा चांद सा अकबर। और एक बार उम्मे सलमा और रोना चाहती है, मगर इससे भी ज्यादा दर्दनाक मंजर नजर आया। क्या देखा, एक टीला है, उस टीले पे कोई बूढ़ा शख्स खड़ा है जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके पूरे चेहरे पे खून लगा हुआ है और उसके हाथों में एक छोटा सा लाशा है जिस लाशे के गले में तीर पे वस्त है। तड़प के कहा, बेटा और ये कौन बूढ़ा है और ये जुल्म किसने किया, इतना नन्ना सा लाशा। एक मरतबा सर झुका के कहा, नानी और ये आपका हुसैन है जो अपने अकबर को पानी पिलाने आया, असगर को पानी पिलाने आया, पानी तो ना मिला, 3 भाल का तीर खाना पड़ा। अभी उम्मे सलमा फरियाद करना चाहती है कि एक आखिरी मंजर देखा। क्या देखा, जिधर खेमे नजर आ रहे थे वहां पे आग के शोले हैं और आग के इन शोलों में कुछ बीवियां घबरा घबरा के बेमकनाव चादर के बाहर आ रही हैं। उम्मे सलमा की निगाह पड़ी, देखा एक बीवी है इस तरह फरियाद करती है कि कभी दरिया का रुख करती है और कभी मदीने का रुख करती है। तड़प के कहा, बेटा और ये कौन बीबी है और ये क्या फरियाद कर रही। आखिर हुसैन भी तड़प के कहते, नानी आपने इसे भी ना पहचाना, अरे ये आपकी बेटी ज़ैनब है, आपकी गोदियों में पली हुई ज़ैनब है। ये मंजर देख रही कि मेरे गले पे कातिल का खंजर चल रहा तो कभी मदीने का रुख करके कहती है, नाना रसूलल्लाह जरा आके देख तेरे हुसैन को किस तरह ज़बह किया जा रहा, और कभी फुरात का रुख करके कहती है, अब्बास जरा आके देख तेरे आका के सर को किस तरह से जुदा किया जा रहा। अजरकुम अल्लाह अला वलानतुल्लाह अला आदाएहि अजमईन। खुदावंदा आजकल अगा खानों में वो रौनक नहीं हो पा रही है कोविड की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरादर मोहतरम सकी पंजू साहब का खुलूस और मेरा भी इनके साथ इसरार के ये अगा खाना खुलेगा और मजलिस यहाँ पे इसी शान से होगी कि शहजादी कौन है सफे अदा पे कहीं ना कहीं बैठी। तो कोविड की भी के मसले की वजह से दुनिया भर के जितने बीमार मोमिनीन और मोमिनात, खास तौर पर जो कोरोना वायरस के मरीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो के इंडिया, ईरान हो इराक, मुसलमान हो के गैर मुस्लिम, जितने भी इंसान हैं, उन सबको इस बीमारी से, उस बीमार करबला के तुफैल नजात दिला जो इस काफिले की अब क़यादत संभालने वाला। और ख़ास तौर पर बरादर मोहतरम शायर अहले बैत अदनान कलीम साहब की जानिब से इल्तिमास आई है कि इनके खालाजाद भाई सैयद रिजवान मेहंदी इब्ने सैयद तजम्मुल मेहंदी जो मौलाना मुस्लिम मेहंदी जरवली साहब के नबीरा हैं, उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है। वो लाहौर के अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं और मसला यही कोविड का है। और फिर खुद इनकी अपनी बच्ची और हमारे रेगुलर नवा खान बरादर मोहतरम अकील साहब की बच्ची और फिर शेख इदरीसुल हसन साहब जो आज ही हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, अभी उनको मुहर्रम का अचरा पड़ना है और तबीयत उनकी बहुत खराब है, और उनकी वालिदा और जिस जिस ने और इल्तिमास दुआ के लिए कहा है, सबके नाम लेना इस वक्त मुमकिन नहीं है, इन सबको खुदा बंदा शिफाए कामिला अता फरमा। मैदान करबला के इन बिखरों लाशों का वास्ता जो उम्मे सलमा मदीने में बैठ के देख रही है, हमारे तमाम मरहूमीन खास तौर पर अल असर इस्लामिक सेंटर के बानी मरहूम गुलाम अब्बास पंजू साहब, जो लोग आज की मजलिस में इतनी जहमतें उठा के आए, इनके खानदान के तमाम मरहूमीन ये आए उतने ही लोग हैं जितने विक्टोरियन गवर्नमेंट के कानून के तहत, और वो तमाम मोमिनीन मोमिनात जो मेरे बयान को दुनिया में कहीं भी सुन रहे हैं, उनके खानदान के तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा। खुदावंदा हुसैन का वास्ता, और फिर माह मुहर्रम मेरी मजलिस का मौजू यही था, हुसैन का वास्ता हर हाजत की कबूलियत का बेहतरीन जरिया, खुद हजरत यूसुफ की दुआ बदल के उसमें आका हुसैन का नाम आ गया, मेरे मजलूम आका का वास्ता दुनिया भर में जितने हाजत मांगे, खासतौर पर लाहौर की एक मोमिना काफी अरसे से एक ऐसे मसले में मुब्तला, उनको और बाकी जितने ऐसे लोग हैं जो परेशान हाल है, जिनकी हाजतें खुदा बंदा हुसैन के तुफैल सबकी हाजतें पूरी फरमा। जो यहूदी को बेटे अता कर सकता है, क्या वो अपने चाहने वालों के हाल पे नजर रहमत नहीं करेगा? और खुदा बंदा जिस इस्लाम के लिए हुसैन ने इतनी कुर्बानियां दी, हमें इस दीन के अहकामात पे अमल की तौफीक अता फरमा, और जिहाद हुसैनी को मुकम्मल करने और इस खून नाहक का इंतकाम लेने के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम जमाना के जहूर में ताजीर फरमा। मातम हुसैन।